वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, और पिछले बुधवार हमने सुना कर्म की कुशलता क्या है, जो कि इस संसार में रहते हुए भी एक जीव को उस कर्म के बंधन में नहीं बांधती। तो जब कर्म की कुशलता भगवान ने अर्जुन को बताई, उसके पश्चात अर्जुन के मन में एक ये प्रश्न उठा, क्या ये कर्म कुशल रूप से भी मैं करूं, निपुणता से, जागरूकता से, एकाग्रता से। पिछले हफ्ते हमने ये तीन कुशलताएं सुनी थी कर्म की। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि यदि मैं कुशलता से अपना कर्म भी करता रहूं, तो क्या मुझे कुछ ऐसा फल उसका मिलेगा कि मैं वास्तविक रूप में इस कर्म बंधन से सदैव के लिए छुटकारा पा पाऊं। तो इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप भगवान आज का श्लोक बोले, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामयम्। भगवान कह रहे हैं जो मनीषिणः, मनीषिण का अर्थ है जो बहुत विचारवान मनुष्य होते हैं, फिलोसॉफिकल, और जो बुद्धि युक्त अर्थात भक्ति योग में स्थित, तो वो मनीषी जो भक्ति योग में स्थित रहते हैं वो कर्मजम। कर्मजम का अर्थ है कर्मों से पैदा हुए फल। जम जैसे कि जन्म, तो ये जम का अर्थ है, जो जन्म शब्द है वहीं से आया है। तो कर्म से जन्मे कर्म फल, तो कर्म से जन्मे कर्म फल जो बुद्धि योग में स्थित मनीषिण होते हैं वो त्यक्त्वा अपनी बुद्धि और भक्ति योग के द्वारा वो उसे उससे मुक्त हो जाते हैं, फलम त्यक्त्वा, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, और जन्म का जो बंधन है उससे भी विनिर्मुक्त हो जाते हैं, और अंततः भगवान कह रहे हैं पदम गच्छन तनामयम, कि ये सब से जो मुक्ति, कर्म कर्म के फल से मुक्ति, जन्म जन्म के बंधन से मुक्ति, तत्पश्चात कोई पूछे या अर्जुन पूछे तो फिर वो जाता कहां है, भगवान कहते हैं पदम गच्छन तनामयम, वो परम पद को प्राप्त होता है जो कि है आध्यात्मिक संसार। तो इस एक श्लोक में भगवान ने इन चार पंक्तियों में भक्ति योग किस प्रकार से किया जाए, उसके लक्षण क्या है और परिणाम पूरा पैक कर एक श्लोक में दे दिया भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय का शीर्षक, अंग्रेजी भगवद गीता में आप पढ़ेंगे, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, पूरे गीता का जो कंटेंट है वो संक्षिप्त रूप में दे दिया। अब देखिए एक श्लोक में भगवान ने पूरी गीता का सार संक्षिप्त रूप में इस एक श्लोक में दे दिया, और ऐसे अनगिनत श्लोक है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग में कोई पूरी गीता नहीं पढ़ने वाला, एक श्लोक भी ले ले, उस एक श्लोक में भी भगवान ने पूरा पावर पैक श्लोक बनाए। तो ये एक श्लोक उसी प्रकार का एक नमूना है जिसमें भगवान पूरा प्रोग्राम दिए हैं हमें बुद्धि योग में लगने के लिए, मनीषिणी बनने के लिए, और पदम पद जो है, परम पद जो है, उसे प्राप्त करने के लिए। तो आज के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध क्या है, भगवान बुद्धि युक्त मनुष्य के कौन से लक्षण बता रहे हैं, जन्म बंधन की व्याख्या क्या है, गच्छन्ति शब्द का महत्व, अनामय पद इस शब्द के तीन अर्थ हमारे वैष्णवाचार्य क्या कहे हैं। तो सर्वप्रथम पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध। पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म की कुशलता बताई और अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने आज के श्लोक में कर्म की कुशलता के फल, एक फल नहीं बहुत से फल, फ्रूट सलाद, बहुत से फल होते हैं ना फ्रूट सलाद, वैसे कौन कौन से फल हैं ये हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि युक्त मनुष्य के लक्षण आज के श्लोक में ये तीन बताए गए। तो जो बुद्धि से युक्त है वो है बुद्धि युक्त, वन हु पोजेसेस रियल गुड इंटेलिजेंस इज कॉल्ड बुद्धि युक्त जीव। तब ये समझ लेना चाहिए कि यदि इस संसार में ये तीन लक्षण किसी मनुष्य में नहीं है तो बुद्धि से युक्त नहीं है, भगवान बोल रहे। तो फलम त्यक्त्वा, एक बुद्धिमान मनुष्य ऐसे ही कर्म चुनता है और ऐसे ही कर्म इस प्रकार से करता है कि वो उसके फल में न बंधे। इसके लिए बहुत बुद्धि लगती है, क्योंकि जैसे भगवान बता रहे कर्मजम, जो पहला शब्द है आज के श्लोक का, कि चाहे कोई भी कर्म आप लो, बिना बुद्धि युक्त यदि वो कर्म कोई करता है, चाहे वो पुण्य भी क्यों ना हो, शास्त्रों पर आधारित भी क्यों ना हो, वो फिर भी बांधेगा। तो फलम त्यक्त्वा, ऐसे कर्म जो बांधे न, उसे कहते हैं फलम त्यक्त्वा। तो क्या लक्षण है कि उसने ऐसे कर्म किए हैं कि जिसके फल में वो बंधने नहीं वाला, जन्म बंध, जन्म बंधन, कि जो जन्म का बंधन है वो नहीं होगा फिर उसे। तो ठीक है, जन्म का बंधन उसे, उससे भी वो मुक्त हो गया, उसके भी वो परे चला गया, तब फिर क्या है उसका डेस्टिनेशन क्या है? तीसरा लक्षण, पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम का अर्थ है आध्यात्मिक संसार, और गच्छन्ति का अर्थ है जाना। तो वो जो आध्यात्मिक संसार है उसे प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बुद्धि युक्त और मनीषिण, इन दोनों को इसी श्लोक पर वो प्रवचन दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि बुद्धि युक्त या मनीषिण दोनों एक प्रकार से सिनोनिम्स है। उसका अर्थ यह है कि जो विचारवान है, दार्शनिक, या अंग्रेजी में जिसे कहेंगे फिलोसॉफिकल। अब फिलोसॉफिकल या विचारवान मनुष्य की व्याख्या यहां पर क्या हुई है कि जो अपने हरेक कर्म को शास्त्र के आधार पर करता है उसे कहते हैं मनीषिणा। जैसे कि कुछ साल पहले चंडीगढ़ के एक सेंट्रल जेल से 10 कैदी फरार हुए थे, और ये 10 कैदी बहुत ही उन्होंने बुद्धि लगाकर वो जो अपना एस्केप है वो प्लान किया था। तो जब वो लोग फरार हुए तो पुलिस जब आकर इन्वेस्टिगेट उन्होंने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन पता लगाने के लिए कि भाई कैसे ये जेल से फरार हुए, तो उन्होंने एक 20 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी थी। 20 किलोमीटर लंबी सुरंग, वो जो उनका सेल था वो सेल से लेके बाहर, लेकिन वो सुरंग खोद कैसे पाए? तो पता लगा कि उस जेल में इतनी थप्पी किताबों की थी, क्योंकि जेल में किताबें पढ़ना अलाउड है, तो इतनी थप्पी किताबों की और सारी किताबें यही थी। कौन सी? एस्केप फ्रॉम दिस प्रिजन, एस्केप फ्रॉम दैट प्रिजन, कौन कौन पूरे संसार में कहां कौन से प्रिजन से एस्केप किए, कैसे, उनका सब फॉर्मूला स्ट्रेटेजी प्रोग्राम सब वो लोग पढ़ पढ़ के और उन्हें 8 साल लगे वो सुरंग और वो किताबों को पढ़कर उसको एप्लीकेशन में डालकर और पदम गच्छन्ति नाम क्या बोलते हैं बैक होम है ना, बोलते हैं ना चलो पढ़ो। तो ये फिर उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विचारवान एस्केप, कि जिन्होंने बहुत 8 साल तक विचार कर ऐसा एस्केप किया। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग भी इस भौतिक संसार के जेल में कैदियों के समान है ना, दुर्ग जेल कहते हैं इस भौतिक संसार को, और भगवान इस जेल से हमें फरार होने के लिए कौन सी किताब दी है? एक ही बस है, भगवद गीता, और भगवद गीता के अंदर सारे नुस्खे बताए हुए हैं कि कैसे आप इस जेल से फरार हो। हमें उसके आधार पर ही यदि गड़बड़ करेंगे तो फिर और 10 साल की सजा हो जाती है। फिर बिना किताबों के आधार पर बाहर जाने की कोशिश कोई करता है तो और वो पीटा जाता है। तो इसलिए यहां पर मनीषिणा का अर्थ है कि जो शास्त्र पर आधारित अपने कर्म बंधन का कार्यक्रम शुरू करे, अपने से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए विचारवान और दार्शनिक उसने बताया गया है। श्रील प्रभुपाद का ये एक उदाहरण था। आपको लग रहा हो क्या हुआ अचानक, ये क्या आ गया? बुद्धि युक्त की व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने अपने इसी प्रवचन में की कि वो बुद्धि उसे भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए वो बुद्धि युक्त का अर्थ है जो भगवान से प्राप्त बुद्धि के द्वारा कर्म बंधन जन्म बंधन और अनामय पद को प्राप्त करता। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है हाईवे पर और वो ट्रक को पकड़ लेता है, फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती? जो ट्रक की स्पीड है ना, पहले पसीना पसीना हो रहा है उसकी क्या कुछ पता नहीं कितनी स्पीड होगी, 5 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर, अब ट्रक को पकड़ लिया 80 किलोमीटर हो गया अचानक, केवल उसने पकड़ने मात्र से उसका स्पीड अब ट्रक का स्पीड हो गया। तो प्रभुपाद ने अपने उस प्रवचन में उदाहरण दिया कि वैसे ही हम अपनी बुद्धि से पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम योजनाएं बना रहे हैं इस भौतिक संसार में सुखी होने के, हमको खाली भगवान की शुद्ध भक्ति की जो ट्रक है ना पकड़ लो, फिर उस स्पीड पे हम निकलेंगे। इसे कहते हैं बुद्धि युक्त, कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है लेकिन भगवान जो कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम ददामी बुद्धि, भगवान कहते हैं कि मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धि युक्त का ये अर्थ है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर भगवान ने जन्म बंधन कहा है और कुछ नहीं, केवल ये नहीं कहा जन्म मृत्यु का बंधन, केवल क्या कहा, जन्म बंधन। क्यों केवल जन्म बंधन क्यों कहा? क्योंकि जन्म बंधन से ही बाकी बंधन जुड़ते हैं, तो बाकी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि जिस जीव ने जन्म बंधन को काट दिया तो बाकी सारे जो बंधन हैं वो अपने आप उसके द्वारा कट जाते हैं। इसलिए जन्म बंधन के साथ तीन बंधन फ्री में मिलते हैं। बोलते ना बाय वन गेट थ्री फ्री। तो जन्म बंधन के साथ भगवान बता रहे हैं बुढ़ापे का बंधन, बीमारी का बंधन और अंततः मृत्यु का बंधन। ये वो पूरा पैकेज डील है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सूक्ष्म मुद्दा ये है कि जन्म बंधन बंधन नहीं दिखता। जैसे भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि ये जो अनुदर्शन होता है इस भौतिक संसार में दुखों का, उसकी शुरुआत जन्म से होती है। और बहुत से कलयुग के जीव इस बात को पचा नहीं सकते कि बाकी तो समझ लिया बुढ़ापा ये दुखालय है, बीमारी मृत्यु, लेकिन जन्म तो हम तो मनाते हैं हर साल हमारा बर्थडे पार्टी इतना जोर शोर से, और कोई जब शिशु जन्म लेता है तो खुशियां खुशियां सब जगह पर, हाँ पेड़े बांटे जाते हैं, पार्टियां और क्या नहीं। तो यहां पर भगवान ये सूक्ष्म मुद्दा ये बता रहे हैं जन्म बंधन की मासूमियत, मासूमियत जैसे यहां लिखा गया इनोसेंस। तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में भी बहुत इनोसेंटली आए, वेरी इनोसेंटली वी केम, जस्ट लाइक अ चाइल्ड वेरी इनोसेंटली टेक्स बर्थ एंड इज वेरी इनोसेंट, बच्चे एकदम सच्चे जो बोलते ना मासूम ये वो। तो हम भौतिक संसार में भी तथाकथित वो मासूमियत के बलबूते पर आए। जैसे श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था कि हम कैसे आध्यात्मिक संसार में भगवान से द्वेष कर सकते, प्रभुपाद ने कहा नहीं द्वेष वो सेकंड स्टेप था, पहला स्टेप क्या था क्यूरियोसिटी। हमारे अंदर एक बहुत छोटी सी जिज्ञासा हुई क्या है भौतिक संसार क्या है, हाँ क्या उसका रंग रूप क्या है। तो बस वो एक मासूम सी दिखने वाली जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बोलते ना, तो वहां से शुरुआत हुई। जैसे कि जन्म के समय शिशु कितना सुंदर दिखता है और कोई उसके अंदर खामियां नहीं दिखती, यहां तक कि माता वो जो शिशु मलमूत्र त्याग करता है उसमें भी कोई दुर्गंध नहीं वो मानती। ये कहा गया है कि उसको वो जो मलमूत्र भी माता जब छोटे से शिशु का साफ करती है तो वो हविष्य के जैसे लगता है। हविष्य आपको पता है यज्ञ का जो प्रसाद होता है उसको हविष्य बोलते हैं। तो फिर ये इसे बंधन क्यों माना गया है? तीसरे स्कंद में आप पढ़ो कपिल मुनि वो बताते हैं पूरी एक एक स्टेप वो शिशु कैसे अंदर, जैसे हमने वो चित्र देखा उस अवस्था में उस शिशु को 9 महीने, हमारा वेडनेसडे प्रोग्राम में कुर्सी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं हम, सोचो न, आजकल कुर्सियों की कमी हो रही, तो सोचो 9 महीने बिना कुर्सी के, यहां पे तो पंखे चल रहे हैं, लाइट है, सब कुछ है, और बाद में प्रसाद भी मिलने वाला है। वहां पे प्रसाद कैसे मिलता है? गर्भ के अंदर जो माता खाती है पूरा ब्लेंडर में पिस के। हम ये उदाहरण देते हैं हमारे गीता कोर्स में कि कल्पना कीजिए आज का डिनर आपको ऐसे दिया जाए, चावल दाल सब्जी चपाती स्वीट सब मिक्सर में डाल के घुमा के वैसे दिया जाए खाने के लिए। तो वो शिशु, और वो भी कहां से? यहां से, यहां पे पाइप लगाया जाता है, इधर से नहीं खा सकते, सीधा नाभि के अंदर डायरेक्टली। क्या मजा आएगा उसमें? ऐसा 9 महीने खाओ, और वो भी आप मेनू डिसाइड नहीं करेंगे, वो जो माता मेनू डिसाइड करती है। तो कपिल मुनि बताते हैं कि शिशु की ऐसी हालत होती है उस वो एम्ब्रियो के अंदर कि माता ने कुछ तीखा खा लिया तो उसके जो उसकी जो त्वचा होती है इतनी नाजुक होती है कि वो तीखा खाने के वजह से वहां पर उसको परेशानी होती है, कोई खट्टा खा लिया जाए। और इर्द गिर्द क्या है? मल मूत्र पस बाइल ये सब कुछ से भरा हुआ। वो 9 महीने उसको उस स्थिति में रहना पड़ता है। तो हालांकि पैदा होने के बाद फिर वो सब कुछ साफ सुथरा बाहर आ जाता है, और फिर वो भी भूल जाता है। जैसे कि हम बचपन में एक वो पद गाया करते थे, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। और कपिल मुनि कहते हैं, उधर श्लोक है, किसके द्वारा कहे गए? वो जो शिशु गर्भ में है उसके द्वारा कहे गए श्लोक हैं, जंतुरुवाच। तो वो श्लोक ये बोल रहा है कि हे भगवान, मैं जिस पीड़ा में हूं आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, मैं फिर कभी किसी के गर्भ में नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं कभी कर्म नहीं करूंगा कि मुझे किसी के गर्भ में जाना पड़े। तो ये जो स्थिति है, श्रील प्रभुपाद अपने इसी प्रवचन में उन्होंने एक सुंदर उदाहरण, ये जो सूक्ष्म मुद्दा हम आज चर्चा कर रहे हैं, जन्म बंधन तो हमें पता है, लेकिन भगवान यहां पर वो सूक्ष्म मुद्दा ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जन्म बंधन बहुत इनोसेंट दिखता है, उसके अंदर बंधन दिखता ही नहीं है, उसके अंदर कोई दुख दिखता ही नहीं है पैदा होने के बाद, और पैदा होने के बाद वो सब भूल जाता है, वो जो अंदर जो कुछ भुगता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था इसके संदर्भ में, हमारे शरीर का उदाहरण प्रभुपाद ने एक कार से दिया, तो हमने आज वही उदाहरण को थोड़ा इलैबोरेट कर दिया है ताकि हम अच्छी से समझे, क्योंकि हम प्रभुपाद की जैसे मनीषिणा नहीं है। तो प्रभुपाद ने कार का उदाहरण दिया और कहा कि जब कोई इच्छा करता है कार की, कि मेरे पास एक गाड़ी हो, है ना, तो ये हमारे प्रभु जी इच्छा कर रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी आलीशान गाड़ी हो। तो यहां पर हम अब पैरेलल्स देखेंगे कि जब जीव इच्छा करता है एक शरीर धारण करने का, तो इसकी इच्छा इसके जीवन में एक गाड़ी हो, और एक जीव की इच्छा कि मुझे उस प्रकार का एक शरीर मिले, प्रभुपाद कहे एक समान है। अ मैन डिजायरिंग टू ओन अ कार एंड अ लिविंग एंटिटी डिजायरिंग टू हैव अ सर्टन बॉडी इज नॉन डिफरेंट। तो अब ये एक्सपीरियंस तो हमारा रहा होगा गाड़ियों का, तो ये एग्जाम्पल ज्यादा रिलेवेंट है। तो फिर जब वो इच्छा करता है तो जाता है खरीदने के लिए, है ना, इच्छा हुई है तो अब गाड़ी खरीदनी है, तो जो सेल्समैन है अलग अलग गाड़ियां दिखाता है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उसकी इच्छा तो है, लेकिन अब प्रकृति कितने अलग अलग मॉडल्स प्रस्तुत करके रखी है। तो जैसे गाड़ियों के अलग अलग मॉडल होते हैं, हाँ, कोई BMW है, कोई मर्सिडीज है, कोई ऑडी है, कोई एकदम मारुति 800 है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने कहा कि अलग अलग मॉडल्स हैं किसके, ये शरीर के, कहां पर उस जीव को जन्म लेना है। तो ये अब उसकी इच्छा हुई है कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तो चाहे वो कितना भी जाके देखे, हाँ, वो जो सेल्समैन होता है वो दिखा देता है, हाँ देखो, लेकिन खरीदने के लिए जेब में उतनी रकम होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा उसी प्रकार से जो कर्म होते हैं उसके, वन इज डिजायर एंड अदर इज डिजर्व, तो जो उसके कर्म होते हैं उसके बलबूते पर उसको जो इच्छा हुई है वो शरीर प्राप्त होगा। तो फिर अलग अलग मॉडल होते हैं, कई बहुत फैंसी मॉडल होते हैं, हाँ, देवताओं के बहुत फैंसी मॉडल हैं उनके शरीर के, कई थोड़े बेढंगे होते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जो मॉडल हैं ये शरीर के, वैसे देखो क्या दिमाग लगा के, पता नहीं कैसा विकृत दिमाग है कि ऐसा मॉडल बना है। कई मॉडल बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में और लिखा भी हुआ है जन्म बंधन के बाद ग्रेव डिगर कि वो जन्मा क्यों है, अपनी कब्र खोदने के लिए। तो कई बार ऐसे शरीर भी प्राप्त होते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं। तो कुछ दिखने में थोड़े कार जैसे। तो यहां पर अब हम प्रभुपाद के कौन से पॉइंट तक आए कि मॉडल्स, इच्छा हुई है और अब वो सेल्समैन अलग अलग मॉडल्स दिखा दिया है ना। फिर उसके बाद में उसने चुनाव किया कि मुझे ये शरीर चाहिए है ना। तो जीव चुनाव करता है, अब मुझे ये शरीर चाहिए। तो फिर वो जब रकम अदा करता है, मतलब उसने जो कर्म किए उस शरीर को प्राप्त करने के लिए, फिर प्रकृति पूरा उसका रिकॉर्ड देखती है, हाँ इसके कर्म के अकाउंट में इतना कर्म है, इसकी इच्छा ये है, तो कर्म के अकाउंट के कर्म के अनुसार और इसकी इच्छा के अनुसार फिर उसको चाबी हैंड ओवर करती है। किसकी, गाड़ी की। तो ये चित्र भी सही है, माया देवी चाबी हैंड ओवर कर रही है, ये तुम्हारा नया शरीर, कांग्रेचुलेशंस अब इस नए शरीर में। तो अब जब उसे उसके गाड़ी की चाबी मिलती है तो एकदम अब क्या है स्थिति, प्रभुपाद ने कहा अब बर्थडे मना रहा हूं है ना, ये बर्थडे मना रहा है, अभी जन्म हो गया, क्या गाड़ी मिल गई, पेमेंट कर दिया, सब कुछ, शरीर मिल गया। तो फिर जैसे ही और थोड़ा बड़ा होता है, चलाना शुरू करता है इस गाड़ी को, तो फिर और मजा आता है कि कितने लोग देख रहे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं मेरी नई गाड़ी आई है, देख रहे हैं ये वो। फिर उसके बाद में उसको समझ में आता है कि इसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, बड़ा होता है तो समझ में आता है कि ये गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन कोने में फिट किया क्या है, ये फ्यूल टैंक, और वहां जब तक पैसा नहीं डालोगे तो वो फ्यूल टैंक भरेगा नहीं, और वो भरेगा नहीं तो ये गाड़ी आगे चलेगी नहीं। इसलिए फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि आटे दाल का भाव क्या है, क्योंकि जिंदगी भर वो सेरेलैक पे नहीं जिएगा, वो भी बहुत महंगा है आजकल, आटे दाल से ज्यादा महंगा है वो। तो फिर जब वो बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि इसमें फ्यूल डालना भी जरूरी है। फिर ठीक है, फ्यूल डाल दिया उसने, फिर जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं, ट्रैफिक जैम, जो जब उसने इच्छा की थी तो ये इच्छा नहीं की थी, है ना? तो इसलिए वो इच्छा बहुत मासूम थी। अब शुरू हो रहा है, देखो उसको समझ में आ रहा है कि वो जो मैंने इनिशियल इच्छा की थी, मैंने ये तो इच्छा नहीं की थी कि इस प्रकार से मेरी गाड़ी ऐसे ट्रैफिक में अटके, और फिर धीरे धीरे आलीशान गाड़ी में तो बैठा है लेकिन बेचारा इतना त्रस्त है, अलग अलग प्रकार से फिर परेशानियां शुरू होती हैं। तो वैसे ही जीव जब बड़ा होता है तो फिर वो जो उसकी मुस्कान, जो बचपन में इतनी फोटो खींची गई उसकी, हाँ सब लोग फोटो खींच रहे थे, स्माइल प्लीज, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बाद में जब बड़ा होता है तो फिर उस गाड़ी की वजह से ऐसी ऐसी हालत होती है, उस शरीर की वजह से ऐसी ऐसी हालत होती है। और फिर मेंटेनेंस, ये क्या है? बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे की स्थिति, गाड़ी एकदम, वो जो भी वारंटी पीरियड था एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर वो वारंटी गारंटी पीरियड के ऊपर गया गाड़ी, तो फिर पता लगा कि अब मेंटेनेंस भी करना है इसका। फिर कई बार गाड़ी की ऐसी हालत होती है, ऐसी भी हो जाती है। फिर पता लगता है कि भाई इस शरीर को चलाने के लिए, जिलाने के लिए कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं। और फिर गाड़ी से उतर कर गाड़ी की मरम्मत इस प्रकार से, और फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा एक दिन, हरे कृष्ण, राम नाम सत्य है। तो अब यदि हम फिर से, उसकी स्थिति फिर ऐसी होती है कि मैं क्यों ऐसी इच्छा किया कि मुझे एक ऐसा शरीर मिलना चाहिए, देन प्रभुपाद कहे एट दी एंड व्हेन ही इज ऑन हिज डेथ बेड देन ही रियलाइजेस दैट अ ग्रेव मिस्टेक ही डिड एंड द बिगर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच ही लेमेंट्स इज दैट ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कर्मा टू गेट अनदर व्हीकल नाउ। फिर से उसका कार्यक्रम शुरू होने के लिए उसने सब कुछ तैयारी कर कर रखी। दैट इज द बिगर लैमेंटेशन इन विच ही इज। तो यदि हम फिर से अब देखें तो क्या वो जन्म हमारा मासूम था? वॉज दैट इनोसेंट नाउ? नहीं। इसलिए भगवान ने आगे का बंधन बोला ही नहीं इस श्लोक में क्योंकि भगवान किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मनीषिणा। कि जो मनीषिणा है, जो बुद्धि से युक्त हैं, वो जानते हैं कि जन्म बंधन का अर्थ है बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वो सब देख लेते पहले, इसलिए वो अपनी बुद्धि लगा के हमको जन्म ही नहीं लेने का, यहां पे इस भौतिक संसार में जन्म ही नहीं लेना है। वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग, हाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अब आगे आज के श्लोक में भगवान ने कहा, तो पॉइंट समझ में आया, प्रभुपाद का उदाहरण बहुत पावरफुल था कार का, कि अलग अलग फेजेस उसके, शुरुआत में एकदम बोलते ना हनीमून पीरियड चल रहा था उसका, फिर बाद में चालू हुआ। तो गच्छन्ति यहां का अर्थ है यात्रा करना, गच्छन्ति का अर्थ है यात्रा करना। तो श्रील प्रभुपाद ने इस शब्द पर व्याख्या की कि बहुत से भगवद गीता के जो तथाकथित टीकाकार है, वो गच्छन्ति शब्द की व्याख्या नहीं करते श्लोक, क्योंकि गच्छन्ति का अर्थ है कि जीव यहां से भगवत धाम जाता है, अर्थात भगवत धाम है। तो केवल ये एक शब्द भगवान ने जो कह दिया गच्छन्ति, इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान साकार है, ही इज अ पर्सन, और उनका धाम एक साकार धाम है। देयर इज अ पर्सनल अबोर्ड ऑफ कृष्णा वेयर अ लिविंग एंटिटी कैन गो, इसलिए भगवान ने गच्छन्ति कहा है। यह नहीं कि हम नहीं जा सकते, भगवान यदि बोल रहे हैं कि हम जा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास पूरा होप्स और कंफर्मेशन एफर्मेशन भगवान के द्वारा साइंड है इस श्लोक में। तो एक शब्द से प्रभुपाद ने, देखो प्रभुपाद की बुद्धि, प्रभुपाद ने केवल वो एक गच्छन्ति शब्द लिया और ये प्रूव कर दिया कि भगवत धाम निश्चित रूप से स्थित है कहीं और वहां पर हम पहुंच सकते, भगवान का ये एश्योरेंस है। तो ये गच्छन्ति शब्द की व्याख्या। अब अंत में आज के श्लोक में भगवान ने जो ये इस्तेमाल किया है अनामयम पद, ये बहुत ही सुंदर संस्कृत के दो शब्द हैं अनामयम। तो पहले हम आमय शब्द के तीन अर्थ क्या हैं। आमय का उल्टा है अनामय। तो आमय शब्द के तीन अर्थ हैं कष्ट, भय और परिवर्तनशील। अब देखिए, चाहे हम हमारा शरीर लें, चाहे अन्यों का शरीर लें, या इस भौतिक संसार को लें, तो किन से बना हुआ है भौतिक संसार? ये तीन चीजों से बना हुआ है, कष्ट, भय और परिवर्तनशील। तो भय, श्रील प्रभुपाद कहे, ये एक मुख्य लक्षण विशेष रूप से कलयुग में देखा जाता है। और ये भय का कारण क्या है? ये दो कारण है, कष्ट। तो प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में कहा कि जब जीव कष्टमय जीवन जीता है और बीच में प्रकृति उसके कष्ट थोड़ा दूर कर देती है या उसके कष्ट कम हो जाते हैं, तब भी उसका भय जाता नहीं। प्रभुपाद कहे, एक तो कष्ट नहीं आए उसका एक भय बना रहता है, और फिर जब कष्ट चले गए और कष्ट के विपरीत यदि उसे कुछ सुकून भी मिल जाए, लेकिन फिर भी भय बनाया रहता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील, क्योंकि फिर परिवर्तनशील। और श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में कह रहे थे कि चाहे कोई कितना भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो और चाहे कोई कितना भी निर्धन भिखारी हो, दोनों परिवर्तनशील। जैसे एक व्यक्ति भिखारी को रोज 10 रुपए दिया करता था, तो रोज भिखारी को 10 रुपए मिलते थे, अचानक रेट कम हो गया उसका देने का, तो फिर 5 रुपए देने लगा, फिर एक महीने बाद 2 रुपया देने लगा, तो भिखारी पूछता है कि साहब क्या हुआ क्या? उसने कहा देख भाई, पहले मैं 10 रुपया देता था ना, मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है, तो फिर 5 रुपये फिर और कम कर दिया। हाँ, फिर वो 2 रुपये का बच्चे हो गए अभी, तो पहले शादी हुई थी इसलिए फिर शादी होते ही 5 रुपया कम किया, बच्चे हुए तो अब 2 रुपये। तो भिखारी देखो क्या बोलता है, भिखारी बोलता है वाह साहब, मेरे पैसों पर घर चला रहे हो। तो वो भी उस्ताद था। तो ये परिवर्तनशील इस संसार का, कि अब कौन किसको पैसे दे रहा है, कौन किसका घर चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कौन किसके पैसे से घर चला रहा है वो भी कंफ्यूज हो गया। अच्छा तुम्हारे पैसे से मैं चला रहा हूं। तो प्रभुपाद ने यही कहा कि ये संसार इस प्रकार से परिवर्तनशील है कि कोई ब्रह्मलोक में है तो वहां से वो गिरकर पाताल लोक में भी जा सकता है और पाताल लोक से कोई उठकर ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। तो आमय शब्द के ये तीन अर्थ बताए। तो अब अनामयम शब्द के तीन अर्थ क्या होंगे? ये तीनों का उल्टा, ये तीनों का उल्टा क्या हुआ? कष्ट रहित, निर्भय और परिवर्तन रहित। तो अब अनामय इस शब्द का अर्थ हम समझ गए। अब पद, भगवान ने कहा है गच्छन्त्य अनामयम पद। तो पद के तीन अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं, स्थान, चरण और उपाधि। संस्कृत का जो शब्द है पद, इसके ये तीन अर्थ हैं। तो अब अनामयम पद, ये दोनों को हमने ज्वाइन किया भगवान ने। तो अनामयम पद शब्द के तीन अर्थ क्या हुए? कष्ट रहित स्थान, निर्भय चरण और परिवर्तन रहित उपाधि। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा जीवन या ऐसा स्थान जो कष्ट रहित हो, ऐसे चरणों की शरण ले जहां निर्भयता आपको प्राप्त हो। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य गोविंद दास वो सुंदर भजन लिखे हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। और फिर ऐसी उपाधि जो परिवर्तन रहित हो। तो इसलिए भगवान यहां पर इस श्लोक में जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि वो गच्छन्ति पद अनामयम, ऐसे आध्यात्मिक संसार को प्राप्त होता है जो कि इन तीन गुणों से परिपूर्ण है। और विशेष रूप से हमारे आचार्य निर्भय चरण भगवान के जो हैं, इनके ऊपर ज्यादा व्याख्या करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इस श्लोक की टीका में उन्होंने भगवान के जो चरण हैं उसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि यदि कोई इस भौतिक संसार में केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान करे तो वो उस अनामय पद को इसी संसार में प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने उदाहरण दिया पूतना का कि पूतना ये ऐसी राक्षसी, ऐसी कलुषित हृदय से ये भगवान को मारने आई थी और पूतना को भगवान ने अनामयम पद दिया। तो चक्रवर्ती पाद वो पूतना का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि अनामयम पद पूतना को कैसे प्राप्त हुआ जो भगवान कृष्ण को मारने आई थी और भगवान केवल 6 दिन के छोटे से शिशु। तो वो बताते हैं, जैसे कि यहां पर भी आप देखो, भगवान छोटे से 6 दिन के पूतना के शरीर के ऊपर, पूतना को मारने के बाद पूतना के शरीर के ऊपर भगवान खेल रहे थे। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि क्रीड़ास्थन, कि उसे एक क्रीड़ा का स्थान बना लिया भगवान ने, एक नया, जैसे बच्चे होते ना, हम लोग यहां पर ये लेवल किए अपने कार्यक्रम के लिए, जैसे ही लेवल किया सब बच्चे आके खेलना शुरू, उनको क्या चाहिए? कोई नया नया क्रीड़ा का स्थान चाहिए। तो बच्चे, भगवान अब जैसे ही पूतना का इतना 8 मील लंबा प्लेग्राउंड देखा तो भगवान खेलना शुरू। तो भगवान अब क्रीड़ा कर रहे हैं पूतना के शरीर के ऊपर, लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पूतना का जब अंतिम संस्कार हुआ, ब्रजवासियों ने पूतना का जब अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ये मरी हुई, अब इसको इतना बड़ी काया इसकी, इसको जलाना है, तो जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो जले हुए मृत पूतना के शरीर से अगुरु की सुगंध आई, वो जो स्मोक आया ना उसकी चिता से, उसकी चित, गुरु आप जानते हैं, गुरु इस संसार के जितने अलग अलग परफ्यूम इत्र ये वो सब मिक्स करो, उससे 10 गुना ज्यादा सुगंधित वस्तु होती है अगुरु, वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो पूतना के चिता से अगुरु की सुगंध आ रही थी, ये कैसे, ऐसी ये राक्षसी। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उसका कारण क्या था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर पूतना के शरीर पे विहार किए, अपने निर्भय चरण को पूतना के शरीर पर उन्होंने डायरेक्टली लगाया। और फिर वो आगे व्याख्या करते हैं कि इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, हम देखते हैं कि किसी की चिता होती है तो गंगा में बहाते हैं ना चिता को, नहीं क्या बोलते हैं, अस्थियों को, अस्थियां वो गंगा में बहाते क्यों, कि यदि किसी भी कारण के वजह से वो जो व्यक्ति मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, यदि उसका उद्धार न हो तो कम से कम वो अस्थियां गंगा के संपर्क में आकर उसका उद्धार कर देंगे, गंगा के संपर्क में, क्योंकि गंगा के अंदर वो शक्ति है। और गंगा के अंदर वो शक्ति कहां से आई, विष्णुपादी, जो भगवान विष्णु के पदों को छूकर गंगा जो आई है वो खाली H2O नहीं है, उसके अंदर भगवान ने अपनी पूरी कृपा। तो चक्रवर्ती पाद यहां पर कहते हैं कि वो गंगा जो कि भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकली, और उस गंगा में इस भौतिक संसार के किसी जीव की अस्थियां कोई डाल देता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो सोचिए कि वो ओरिजिनल चरण कमल किसी के शरीर, मृत शरीर को स्पर्श करे तो क्यों नहीं अनामयम पद उसको प्राप्त होगा। तो ये पूतना को ऐसी कृपा कि पृथ्वी देवी वो ये कह रही थी कि जब भगवान वृंदावन में थे तो भगवान वृंदावन में नंगे पैर घूमते थे, लेकिन जब भगवान वृंदावन छोड़े तो फिर भगवान जो भी कुछ अपने पादतरण पहनना शुरू किए, फुटवेयर पहनना शुरू किए। तो पृथ्वी देवी फिर भगवान से ये याचना कर रही हैं कि मेरा सौभाग्य अब चला गया, क्योंकि अब आपके डायरेक्ट चरण मुझे नहीं लग रहे। और अपनी एक प्रार्थना में पृथ्वी देवी कह रही हैं कि पूतना मुझसे भली, कि पूतना के शरीर के ऊपर आप अपने दोनों चरण के साथ विहार किए। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद आज के श्लोक की टीका में कहते हैं कि ये जो पदम अनामयम भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को, हालांकि वो थोड़ा एक रसिक टिंज दे रहे हैं इसके अंदर, वो कहते हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे चरणों पर ध्यान करो बस, और तुम्हें वो अनामय पद मैं और मेरे चरण तुम्हें दिलाएंगे। तो इसलिए ये जो आज का श्लोक है इसके अंदर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस सिद्धांत से लेके टॉप मोस्ट सब कुछ बताया गया आज के श्लोक के अंदर, कि कर्म जम कि कर्म और कर्म के फल, जन्म उसका बंधन, और उसके साथ हमने देखा सारे बंधन, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, सारे बंधनों से मुक्त होकर जो बुद्धि युक्त में स्थित मनीषिण कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण और कष्ट रहित, परिवर्तन रहित ऐसे निर्भय आध्यात्मिक संसार को प्राप्त होता है, ये एक श्लोक में भगवान ने बेसिक से लेके सबसे टॉप मोस्ट सिद्धांत बता दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब इस श्लोक पर प्रवचन किए तो प्रभुपाद ने कहा दैट कृष्णा हैज फिल्ड द एंटायर प्रोग्राम फॉर अस टू गेट रिड ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड वंस एंड फॉर ऑल,
एंड गो बैक होम बैक टू हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड लिव फॉर एवर एटर्नली ब्लिसफुली इन हिज लविंग सर्विस अंडर हिज लोटस फीट। श्रील प्रभुपाद की तो ये आज के इस श्लोक की पूरी व्याख्या। श्रील प्रभुपाद और चक्रवर्ती पाद इनकी टीकाओं पर आधारित। किसी का कोई प्रश्न है आज के प्रवचन के संदर्भ में?